इसीलिए फिर आगे फरमाया अगली आयत में देखिए, वलकद अरसलना मिन कब्लिका फी शियाइल अव्वलीन, हमने आपसे पहले अगली उम्मतों में भी रसूल बराबर भेजे, और लेकिन जो भी रसूल आता वो इसका मजाक उड़ाते, गुनाहगारों के दिलों में हम इसी तरह यही रचा दिया करते हैं। इसको हाईलाइट कीजिएगा, कज़ालिक नसलुकुहु फी कुलूबिल मुजरिमीन, ये कुरान मुजरिमों के दिलों में सुलाख की तरह घुसता है, उनका दिल नहीं लगता इस किताब में। कभी आपने गरम सुलाख को गोश्त या कबाब बनाते वक्त उसके अंदर घुसाड़ते हुए देखा होगा, कैसे एक धुआं उठता है, यानी जैसे एक जलती हुई सुलाख पे गोश्त या कीमा डाल दिया जाता है तो धुआं उठता है ना, मोमिनों के दिलों की तो ये ठंडक है। कुरान मेरे दिल की बहार वाली बात याद रखिए, लेकिन कुछ लोगों को ये बड़ा चुभता है। आज भी आपका जितना ईमान होगा ना, आपका दिल कुरान की महफिल में लगेगा, आपकी नींद खत्म, आपकी घबराहट खत्म, बीमारी खत्म, परेशानी खत्म, सारे मसले ही खत्म। और कुरान सुनना, कुरान समझना, कुरान के लिए वक्त लगाना, कुरान का पढ़ना बढ़ाना, ये दलील है कि जितने जिंदगी में जुर्म ज्यादा होंगे, क्रिमिनल्स होंगे हम, हमारे जिंदगी में कोई नाफरमानियां होंगी, उतना कुरान से बंदे का दिल दूर होने लगता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बातें बताकर, पीछे आप देखे ना कि कुरान की हिफाजत की बात हुई, यहाँ साथ ही कह दिया कि मैंने एक सेफ्टी वॉल लगाया हुआ है। जरा समझिएगा, मिसाल जरा जो होती है ना, उसको मेरी असल चीज से अलग लेके समझा करें, वो सिर्फ आपके मेरे लेवल के लिए होती है ना, वो अल्लाह के लिए होती है ना रसूल के लिए होती है, हमारे छोटे छोटे दिमागों को बात समझ आ जाए। आमतौर पर घरों में बिजली के बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, लेकिन बाहर मेन डोर के पास से एक मेन स्विच लगा होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, ये मेन स्विच है। कभी घर में बिजली की कोई चीजों में फ्लक्चुएशन हो, ज्यादा लोड हो, तो क्या आप कहते हैं फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ने का मतलब पता क्या है, कि आपकी फ्रिज को जलने से बचा लिया, कि आपके टीवी को, आपके कंप्यूटर्स को, एकदम वो खुद ही इमरजेंसी पे बंद हो जाता है। अल्लाह सुबहान तआला ने ये एक सेफ्टी चेक लगाया हुआ है, कुरान की हिफाजत का ये एक तरीका है, कि कुरान के अंदर चूंकि कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती, कुरान को अल्लाह ने सिक्योर करना है, तो अल्लाह ने इधर बाहर एक चीज लगा दी कि मुजरिम दिलों को ये कुरान अच्छा ही नहीं लगता, ज्यादा देर वो कुरान ना पढ़ सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, क्योंकि दिल कहीं और होता है। अल्लाह के नबी ने 23 साल तक इस किताब को अपने हाथों में बराबर थामे रखा, ना थके ना अके, ना आप बोर हुए। हम थोड़ी सी देर कुरान पढ़ के कहते बस, अब और क्या करें, अब पढ़ लिया, अच्छा अब ये, अच्छा थोड़ा और पढ़ लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा दीन का काम कर लिए, थोड़े से हम अंसारुल्लाह बन गए, बस कब तक। घर वाले भी देख रहे होते हैं, रस्ता बेगम अब कब तक, बोलिए जिंदगी के आखिरी सांस तक, जब तक मैं अपना पूरा इसको दे के दुनिया से ना जाऊं और अपने पीछे सदका जारिया ना छोड़ दूं, मैं इस किताब को नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, वो इस पर ईमान नहीं लाते, और यकीनन अगलों का तरीका यही गुजरा हुआ है। वलव फतहना अलैहिम बाब मिनस समा, और अगर हम इन पर आसमान का दरवाजा खोल भी दें और ये वहां चढ़ने भी लग जाएं, और तब भी यही कहेंगे कि हमारी नजरबंदी कर दी गई है, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है, यानी ये मौजजात का मुतालबा करने वाले लोग। वलकद जअलना फिस्समाई बुरूजा, यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं, हर देखने वालों के लिए इसे सजा दिया, और इसे हर मर्दूद शैतान से महफूज रखा। हम अगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करें, इसके पीछे दहकता हुआ खुला शोला लगता है। ये देखिए, कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने सेफ्टी गार्ड लगा दिए। जब तक कुरान पाक का नजूल शुरू नहीं हुआ था, जिन्नात ऊपर आसमानों पे जा सकते थे, वहां जाते ऊपर से कुछ आलमे वाला की बातें सुनते, अल्लाह तआला फरिश्तों को कोई हुक्म दे रहे हैं, कुछ कच्ची पक्की बात सुनकर वापस आकर उसमें एक सच में 100 झूठ मिलाकर काहिनों और ज्योतिषियों के दिमागों में, दिलों में डालते हैं, फिर वो लोगों को उनकी किस्मत का हाल बताने के नाम पर उनके ईमान ले जाते हैं। जब कुरान पाक नाजिल होना शुरू हुआ तो अल्लाह तआला ने आसमानों पर एक फिर लिस्ट लगा दी, ये इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बारे के थीम एक मेन चीज हम पढ़ेंगे, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये बड़ी हिफाजत से रखी हुई किताब है। अल्लाह ने इस किताब के ले जाने के लिए क्या इंतजाम किया, एक छोटी सी मिसाल से समझिए। कभी आपने एयरपोर्ट के रास्ते में कुछ गाड़ियों को देखा हो, आगे भी गाड़ी, पीछे भी गाड़ी, सिक्योरिटीज, पुलिस, फौज और बीच में एक गाड़ी होती है। अमूमन तो ये शख्सियात की होती है, किसी मुल्क का सदर, वजीर कोई आया है तो उसकी हिफाजत के लिए लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। इसी तरह कई दफ़ा कुछ कीमती डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव किए जाते हैं, उसको भी पूरी सिक्योरिटी के बीच में रखा जाता है। दुनिया का सबसे कीमती डॉक्यूमेंट ये कुरान है, इसको लिख लीजिए। जब इसको आसमाने दुनिया से जमीन पे लाया जा रहा था तो अल्लाह ने इसकी हिफाजत का इंतजाम जो किया वो इन आयात में आपको मुझे दिख रहा है, और हम इन सारी आयतों को पढ़ने के दौरान शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह तूने हमें इतनी हिफाजत से रखी हुई किताब पढ़ने की तौफीक दी। एक दौर ऐसा भी गुजरा कि मजहबी किताबें आम लोगों के तो हाथ में नहीं होती थी, तौरात पे ऐसा दौर गुजरा कि वो थी नहीं दुनिया में। कुरान की ये खूबी है, हर खास व आम के हाथ में अल्लाह इस किताब को दे देते हैं, और साथ ही अल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि एक आयत अब यहाँ सितारों की हुई है, और सितारे बामकसद हैं। आप खूबसूरत डेकोरेशन पीस ले आते हैं, मकसद कोई नहीं होता। क्या पता चला कि इसमें जमाल भी है और कमाल भी है। और फिर आगे जमीन की कुछ बातें, वल अर्द मदद ना हा, और जमीन को हमने फैला दिया और इस पर अटल पहाड़ डाल दिए, और इसमें हमने हर चीज एक मुअय्यन मिकदार से उगा दी, और इसी में हमने तुम्हारी रोजियां बना दी और जिन्हें तुम रोजी देने वाले नहीं हो, और जितनी भी चीजें हैं इन सब के खजाने हमारे पास है, और हम हर चीज को इसके मुकर्रर अंदाजे से उतारते हैं। इसको भी हाईलाइट कर लें, कितना पानी चाहिए जमीन में, कितने ग्राम ऑक्सीजन, अल्लाह ने सब कुछ लिख दिया। आपने घर में कोई प्रोग्राम करना होता है ना तो आप पहले अंदाजा लगाते हैं, अच्छा क्या पकाएंगे, अच्छा इतना गोश्त ऑर्डर कर देते हैं, इतने चावल, बिल्कुल अल्लाह ने दुनिया के पहले इंसान से लेके आखिरी इंसान तक का रिस्क, उसके हिस्से की ऑक्सीजन, उसके हिस्से का पानी बेकदर मालूम। कितनी चिड़ियाएं हैं, कितना दाना चुगना है, कितने कव्वे, कितनी उसकी हजारों मखलूकात को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रखा और बेहतरीन तरीके से पेश कर दिया। क्या पता चला कि अल्लाह सुबहान ताला की तकदीर उसका अंदाजा है, अल्लाह ने सब के लिए रखा। अगर हमें सब कुछ पैदा होते ही मिल जाता, यानी एक बच्चा पैदा होता साथ ही बार ट्रक आने शुरू हो जाते, ये सारी जिंदगी में इसने खाना है, ये पीना है, ये इसके कपड़े कहाँ रखते, किधर रखते, शुरू में तो रखते बाद में जाया हो जाते, फिर क्या होता। याद रखिए अल्लाह के नबी की हदीस है कि किसी को मौत नहीं आ सकती जब तक अपने हिस्से का खा पी ना ले, पहन ना ले, ओढ़ ना ले, तो इसलिए कभी अपनी रिस्क रोटी की फिक्र ना किया करें। माँ को बहुत फिक्र होती है अपने बच्चों के मुस्तकबिल की, हाय कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे। बच्चों को इस किताब से जोड़िए, मकसद हयात दीजिए, अल्लाह के नबी के दीन के दिफा के लिए उनके दिल में मुजाहिदाना जज्बात पैदा कीजिए। बाकी रोजी रोटी अल्लाह ने उनको दे देनी है, क्योंकि अल्लाह कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता। और इस किताब के साथ जब ताल्लुक बनता है तो कायनात भी एक किताब लगती है, ऐसे इन आयात में दिख रहा है। आय 22 देख लीजिए, वर्सल नरिया हलवा के, और हम भेजते हैं बोझल हवाएं, फिर आसमान से पानी बरसा कर वो तुम्हें पिलाते हैं, और तुम इसका जखीरा करने वाले ही नहीं हो। वह इन्नाशी वन उम्मीद, और हम ही जिंदा करते और मारते हैं, और हम ही बिलाखिर वारिस है। हाईलाइट करें विरसा, विरासत, बड़े कान खड़े होते हैं इस पे। कोई दुनिया से जाता है तो लोग कहते हैं क्या छोड़ गए, ऐसे ही किसी का इंतकाल हुआ तो खवातीन कानों में चुपके चुपके पूछती हैं मरहूम क्या छोड़ गए। तो एक खातून जो जरा समझदार थी कहने लगी सब कुछ छोड़ गए, यानी जू मानी जुमला बोला। तो आपकी मेरी चीजें हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को जाती है ना, बिल आखिर अलवारिस तक जाएंगी। तो जिंदगी में क्यों नहीं कह देते कि अल्लाह मेरा सब कुछ, मेरी जिंदगी में भी तेरा। हम क्यों अपने पीछे लड़ाई झगड़े के असबाब छोड़कर जाएं। तो अल्लाह ताला के नाम अलवारिस को सुनिए, हमारी बड़ी खूबसूरत सीरीज जिसको अल्लाह ने बड़ी बरकत दी, वो है अमेज्ड बाय अस्माल हुस्ना, कोविड के दिनों में पूरे साल में हुई थी। आप सुनना शुरू कर दे, रमजान के बाद के कामों में लिख लीजिए। एक नाम सुनते हैं ना आपको ऐसा अल्लाह से ताल्लुक महसूस होता है कि वाकई मैं इस अल्लाह को पहले से जानती थी। हकीकत है कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तो उसमें अलवारिस नाम पे बहुत डिटेल्स हैं, सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा। और साथ ही बता दिया, और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने वाले भी हमारे इल्म में हैं, आपका रब सब लोगों को जमा करेगा, यकीनन वो बड़ी हिकमतों वाला बड़े इल्म वाला है। अब आगे इंसान को उसकी कहानी सुनाई जा रही है। वलकद खलकनल इंसान मिन सलसाल, यकीनन हमने इंसान को खुश्क मट्टी से और जो कि सड़े हुए गारे की थी पैदा फरमाया है। इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया, और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं एक इंसान को, जरा सा इंसान होने के नाते अपना तारुफ सुनिए। अगर अरबी आती हो ना तो सिर्फ अरबी के लफ्जों को देखिए, इन्नी खालिकु बशर मिन सलसाल मिन हमाए मसनून। क्या कहा, मैं एक इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से पैदा करने वाला हूँ। ये है आपका मेरा मटेरियल जिस्मानी, ये मादी, ये जो मादी वजूद है ना, ये मट्टी के मुख्तलिफ मराहिल हैं, हत्ता कि उसमें लेस पड़ गई, जरासीम पैदा हो गए, फिर ही जिंदगी पैदा हुई। अंदर रूह ना होती ना तो हम रोज ठोकरों में पड़े होते हैं, मट्टी के टूटे हुए बर्तनों की तरह। तो जब मैं इसे पूरा बना चुकूं और मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे तमाम फरिश्तों ने, सब के सब ने सजदा कर लिया, इल्ला इबलीस अबा अय्यकूना मा साजिदीन, मगर इबलीस के इसने सजदा करने वालों में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। जहाँ आपको अब अबदी दुश्मन का पता चल रहा है, आइए थोड़ा सा तदब्बर और अमल करते हैं आयत 31 तक। ज़ियारत कबूर एक बेहतरीन अमल है, क्योंकि इससे दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की याद पैदा होती है। तो कब्रों की ज़ियारत कीजिए, क्योंकि इस पूरे हिस्से में शुरू में ही आपने देख लिया कि हर एक को मौत आनी है साथ ही, और अल्लाह वारिस है। और इसी तरह वो हसरतें जिसका शिकार दूसरे लोग होने वाले हैं। फिर इसी तरह वक्त को मुनज़्ज़म करने के लिए टाइम टेबल बनाइए, ताकि इसे मकासिद का तायुन हो, क्योंकि हमारी जिंदगी सांसों में है। बड़ी मुख्तसर जिंदगी देकर अल्लाह ने आपको मुझे भेजा। कायनात की जिंदगी देखिए कितनी बड़ी, आसमान कितनी सदियों से, हमें नहीं पता कब तक रहेगा। जमीन को देखिए, सूरज चांद को देखिए, और इंसान जिसके लिए ये सब बनाया है वो चंद साल जीते, 100 साल भी जी ले तो बड़ी बात। तो इस छोटी सी जिंदगी को देखिए। और मैं जब इंसानों की भीड़ देखती हूँ, आज भी रात जब हम हरम में थे और चारों तरफ इंसान, और कोई दो इंसान आपस में ना मिलते देखे, मैंने कहा अल्लाह तूने कायनात में जो सबसे बड़ा मोजज़ा, जो सबसे बड़ा मार्का पेश किया ना, वो इंसान है। चलता फिरता बोलता खाता सांस लेता, जज्बात गुस्से में आता, मोहब्बत करता आजजी करता। आप अपने ऊपर गौर करें ना, आपकी अक्ल दंग रह जाती है। इतना रश था कल मगरिब में कि सिर्फ खड़े होकर नमाज पढ़ने की जगह थी, और वो यौम यकूम अन्नास ले रब्बिल आलमीन वाली कैफियत थी। भी और भी लोग आ रहे हैं। और ऐसे ही जब इंसानों के इज्तेहाम में बंदा हो और सोचने की आदत हो, तो फिर जो कुर्ब मिलता है अल्लाह का, कि अल्लाह इन प्यारों को सबको बख्शते हैं, तेरा मास्टरपीस इंसान है। तो अपनी जिंदगी के वक्त को ना मैनेज कीजिए, इसी तरह खैर और इताअत में आगे बढ़े। अल्लाह दावते हक को कबूल करने वालों से भी वाकिफ है, और पीछे रह जाने वालों और रखने वालों से भी आगाह है। कुरान से रहनुमाई, दुनियावी ऐशो इशरत के सामान में मशगूल हो जाना नेक अमल से खाली कर देता। कुरान सुनकर या पढ़कर फायदा ना उठाना दरअसल गुनाहों की सजा है, ये भी नोट कीजिए। अल्लाह गुनाहों की सजा सिर्फ रोजी रोटी बंद करके नहीं देता, बल्कि अल्लाह सुबहाना तला गुनाहों की सजा कुरान से दूर करके भी देता है। रिस्क की तंगी पर गम ना कीजिए, अल्लाह की हिकमत को समझें, जिसने जो मुकद्दर किया इस पर राजी हो जाइए। हदीस से हमें एक रेफरेंस मिलता है कि इंसान का जो कैलिपर होता है ना, उसके मुताबिक अल्लाह रिस्क देता है। कुछ लोगों को अल्लाह ज्यादा रिस्क दे दें तो वो बगावत पे आ जाए, क्योंकि बर्तन ही छोटा सा है, छोटा बर्तन जल्दी भर जाता है, खनकते हैं जल्दी जल्दी, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। कुछ लोगों का अगर अल्लाह पैसा ले ले तो दीन छोड़ दें, क्योंकि उनके मिजाज में शुक्र होता है, वो नेमतों में ज्यादा खुश रहते हैं, आजमाइशों में खुश नहीं होते। तो ये अल्लाह तला के फैसले हैं। इसी तरह गौर व फिक्र की चंद बातें, जब तमाम मोमिन जन्नत में चले जाएंगे तो इस वक्त काफिर मुसलमान होने की आरजू करेंगे। हमें इस जिंदगी में ही लोगों को इस्लाम की दावत देनी है। दावा कीजिए, दावा कीजिए, दावा कीजिए, दावे नहीं दावा कीजिए। लंबी उम्मीद लगा लेना एक दिल का रोग है, हमेशा नजर रखें कि दिल की कैफियत क्या हो रही है, यानी तूलुल अमल। अल्लाह ने कहा दुनिया में खा रहे हो पी रहे हो, इसलिए लंबी उम्मीदें आखिरत को भुला देती हैं। आज भी दुनिया हमारा मसला है और कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो हम इस दुनिया में नहीं पूरे हो पा रहे, हम आखिरत की क्या फिक्रें करें। इसी तरह ख्वाहिशात की इत्तबा हक से रोक देती है। गौर व फिक्र की बात है, कुरान हर तब्दीली और रद्दोबदल से महफूज है क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। कुरान में नसीहत लेने वालों के लिए हर तरह के मसाइल से मुतल्लिक अहकामात और वाज़ह दलाइल मौजूद है। आदम और इबलीस के किस्से में इंसान को इबलीस के शर और फितने से डराया गया है। और किस्सा आदम और इबलीस कंटिन्यू होता है आयत नंबर 32 से, काला या इबलीस मालक अल्लाह तकूना मा साजिदीन। अल्लाह ताला ने फरमाया इबलीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। वो बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने काली और सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से पैदा किया है। फरमाया अब तो बहिश से निकल जा क्योंकि तू रांधे दरगाह है और तुझ पर मेरी फटकार है क्यामत के दिन तक। काल रब्बी फानजिर नीला यौमी युबअसून। सिर्फ इसी आयत पे गौर कीजिएगा, रब्बी का लफ्ज बता रहा है कि अल्लाह को रब मानता था, कोई सबका लाख नहीं, बीच में कोई वसीला नहीं रखा, वास्ता नहीं रखा, डायरेक्ट अल्लाह से मांगा तो दुआ मांगने का सलीका भी इसको आता है। तीसरी बात, यौमी युबअसून कह के अकीदे आखिरत वाजे कर रहा है, इसके बावजूद रांधे दरगाह क्यों हुआ ये सोचिएगा। हम कहते हमारे अकीदे तो ठीक है ना, अब हम जन्नत में तो जाएंगे। अकीदा ठीक था लेकिन दो तीन मसले थे, उनमें एक मसला क्या था, तकब्बुर था, मुतकब्बिर था। कहने लगा ए मेरे रब मुझे उस दिन तक की ढील दे कि लोग दोबारा उठा खड़े किए जाएं। फरमाया कि अच्छा तू इनमें से है जिन्हें मोहलत दी गई, यानी अल्लाह ने भी शाने बेनियाजी से क्या कह दिया, काला फइन्नक मिनल मुनजरीन। कब तक इला यौमिल वक्तिल मालूम, रोजे मुकर्रर के वक्त तक की। शैतान ने कहा है मेरे रब, नोट कीजिए रब्बी रब्बी कहते जुबान नहीं थक रही लेकिन आमाल भी तो देखो करते क्या हो। चूंकि तूने मुझे गुमराह किया, ये थी इसकी खराबी, तूने मुझे गुमराह किया, नऊजुबिल्लाह, मुझे भी कसम है कि मैं भी जमीन में इनके लिए गुनाहों यानी मासी को मुजयन करूंगा, ये दूसरा गुना है, और इन सब को बहकाऊंगा भी, ये तीसरा गुना है। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे इन बंदों के जो मुंतखब कर लिए गए। मुखलिस नहीं मुखलस, इसका फर्क हम अक्सर सूरह स्वाद में देखते हैं, वहां देखेंगे। काला हाज़ा सिरातु अलैया मुस्तकीम, इरशाद हुआ हाँ यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है। क्या इखलास, याद रखिए इखलास वाले बंदे पे शैतान का जोर नहीं चलता। अल्लाह में इखलास की दौलत से माला माल कर दे। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं, लेकिन हाँ जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करें, यकीनन इन सब के वादे की जगह जहन्नुम है। लहा सोबत अबवाब, जिसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए इनका एक हिस्सा बना हुआ है। 7 दरवाजों का मतलब क्या है ये जरा समझ लें। अल्लाह ताला ने जहन्नुम के दरवाजे ज्यादा क्यों रखे, क्योंकि हर तरफ से लोग जाएंगे तभी भरेगी, और कई गुना है, हर गुना के ऊपर अलग दरवाजा, लेकिन खुश हो जाइए कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजा फिर भी ज्यादा है। ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि नेकी करनी मुश्किल है, याद रखिए गुना करना मुश्किल है। फितरतन देखा जाए तो नेकी करनी आसान है क्योंकि फितरत में एक जुमला है नेकी, अल्लाह की हर बात मानते जाओ, बस सरेंडर कर लो। इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम, काल अस्लम तुले रब्बिल आलमीन। बस इसके बाद देखिएगा कि सारा रिजेंटमेंट खत्म, सारी बातें जो अल्लाह के हुक्मों के ऊपर जहनों में दिमागों में आती है वो खत्म हो जाएंगी, और अल्लाह ताला अपनी रहमत से अता करेगा जो आपको मिलने वाला है। और यहाँ ये भी बात नोट कर लीजिए कि अल्लाह सुबहान ताला कभी किसी पे जुल्म नहीं करेगा, पक्की बात है। हर इंसान, हर चींटी, हर मखलूक को वो ऐसे जानता है जैसे कोई चीज सामने रखी हुई हो। अल्लाह ताला ने आपको मुझे दुनिया में भेजकर सब कुछ देकर अब जो दावत दी है वो कह के नेक बन जाओ, इसीलिए आके नेक लोगों का अंजाम। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातें व उयून, परहेजगार जन्नती लोग बागों और चश्मों में होंगे। इनसे कहा जाएगा सलामती और अमन के साथ इसमें दाखिल हो जाओ। इनके दिलों में जो कुछ रंजिश और कीना था हम सब कुछ निकाल देंगे। इसको हाईलाइट कीजिए, व नजाना माफी सुदूरे मिन गिल। आज जिंदगी में दिलों से गिल निकाल दें, ये बहुत है, ये कोलेस्ट्रोल से भी ज्यादा खतरनाक है। हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है ना, वेन सुकड़ जाती है, ब्लूमिंग करवाते हैं, कभी लोग बाईपास ऑपरेशन करवाते हैं। जिस तरह जिस्मानी हार्ट है ना, जिस्मानी तौर पे आप कह लीजिए कि कल्ब और दिल, इसकी सेहत होती है ना, क्यों आता है कोलेस्ट्रोल? आप ऑयली खाने खाते हैं, रोज फ्राई चीजें खाते हैं, खा खा कर सोते हैं, बैठते हैं, गलत वक्तों पे खाते हैं, रातों को खाते हैं, दिन को जागते हैं, यानी दिन को भी सोते हैं और रातों को जागते हैं। अब ये सारी चीजों से जिस्म खराब होता है। बंदा मोमिन का लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी होता है, उसका खाना बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि उसकी मदद उसकी सेहत है। इसी तरह हमारी रूहानी सेहत नेक जज्बात से है। ये गिल जो है ना, ये बीमारी है, ग्रज। कुछ लोग इतने नेगेटिव थिंकर होते हैं, उनको हर बंदा गलत लगता है, हर बंदा जहन्नमी लगता है, हर बंदा मशकूक लगता है, और हर बंदे के बारे में वो कहते हैं कि इस पे मुझे कोई शक है। घर के रिश्तों की बात कर रही हूँ, बाहर की नहीं कर रही। अब अपने दिल को देखें, दूसरों को तो हम नहीं कुछ कह सकते ना। आप अपने आप को चेक करें कि अक्सर आपकी भवें तनी रहती हैं, आप ऐसे तेवरी डाल के देखते हैं, माथे पे झुरियाँ। कई लोग ऐसे हैं, अगर आईने में आप खुद भी देखें, यहाँ झुरियाँ पड़ चुकी हैं, यूं होते हैं, ऐसे कनिंग से हैं, और वो फिर ऐसे हो जाते हैं कि चेहरे के ऊपर वो बॉडीज का हिस्सा बन जाते हैं। इसकी वजह है कि दिलों में कीना। अल्लाह के नबी का जो वजूद आपको मुझे दिख रहा है ना, आपका दिल बड़ा साफ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने मामले में इस बात का इजहार करते आपको नहीं दिखते कि लोगों तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं नबी हूँ। है नबी गुनाहों से पाक और इतने आजिज मिजाज, इतने प्यार से बात सुनते, तो क्योंकि दिल साफ था। तो चलिए दिल साफ कीजिए। रमजान में घर तो साफ हो जाते हैं, नामे अमाल भी साफ हो रहे हैं। कई लोग नेकियां कर कर के नामे अमाल माशाल्लाह बहुत प्यारा कर लेते हैं, दिल साफ नहीं है। और आपको देख, जिस शख्स के दिल में कीना, उसकी बातें नहीं कबूल होती। 3 दिन से ज्यादा कोई मुसलमान भाई अपने किसी जाती ग्रज की वजह से दूसरे से ना मिले, कोई रिश्ते नाते में ना मिले, इबादत रोक ली जाएंगी कि पहले इसको करो। मैं आपको मिसाल फिर देने लगी हूँ, क्लॉक सिंक में पानी जा नहीं रहा, धो रहे चावल कुछ भी करें पानी ऊपर ही है। सबको समझ आ जाती है कि इसकी जो पाइप है ना, इसमें क्लॉग आ गया। क्लॉग की सूरत में पानी नहीं, क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं, खोलो पानी डालो, कोई ऐसी चीज डाल दो जिससे सारा गंद निकल जाए। ये जो गिल है ना, ये क्लॉग है, वापस आती है चीजें, उबल उबल के गटर उबलते हैं। तब तो मेरा ख्याल है आपका दिल इस चीज पे तैयार होगा कि मैंने अपने दिल में किसी के लिए रंजिश और कीना नहीं रखना। अब सुनिए दोबारा, इनके दिलों में जो कुछ रंजिश और कीना था, हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे, ना तो वहाँ इन्हें कोई तकलीफ छू सकती है और ना वो वहाँ से कभी निकाले जाएंगे। नबी भाती अन्नी अनल गफूर रहीम वन्नाजा बिहुल अजाबुल अलीम। देखिएगा, एक ही आयत में उसकी रहमतें और उसके अजाब का तस्करा है। मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान हूँ, साथ ही मेरे अजाब भी नहायत दर्दनाक हैं। क्या पता चला, अल्लाह सुबहाना ताला की हर सिफत मुकम्मल है। अब तुम देखो खुद को अल्लाह की किस शान का हकदार बनाते हो। नाफरमानियां सरकशियां करके जहन्नुम के 7 में से किसी एक दरवाजे में से जाना चाहते हो, कीने और बुग़्ज़ रख के जन्नत से दूर रहकर 8 दरवाजों से बाहर रहना चाहते हो। अब ये तुम खुद देख लो, अल्लाह ने तुम्हें जो दे दिया, दिखा दिया, बता दिया, इसको ले लो। तुम दीन का मजाक उड़ाते हो, रसूलों के रास्ते रोकते हो, या तुम रसूलों के मिशन के राही हो, ये तुम वो देख लो जो नबी के दौर में मौजूद थे। तो जितना ज्यादा आप इन आयात पे गौर करेंगे, आपको अल्लाह ताला पे प्यार भी आएगा और मोहब्बत भी आएगी। और अब आगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों के नाते से कुछ बातें, सूरत का ततीमा इसकी तरफ चलेंगे। व नब्बे हुमन दई फी इब्राहिम, इन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का हाल भी सुना दीजिए। कि जबकि उन्होंने इनके पास आकर सलाम कहा तो उन्होंने कहा हमको तो तुमसे डर लगता है। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तुझे एक साहिब इल्म फर्जंद की बिशारत देते हैं, कहा कि इस बुढ़ापे के आ जाने के बाद भी तुम मुझे खुशखबरी देते हो, ये खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो? उन्होंने कहा हम आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में शामिल ना हो। कहा अपने रब की रहमत से ना उम्मीद तो सिर्फ गुमराह और बहके हुए लोग ही होते हैं। पूछा कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तो तुम्हारा ऐसा क्या अहम काम है? उन्होंने जवाब दिया कि अब मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए, पीछे भी किस्सा आया था, कौम लूत की तरफ इशारा, इल्ला आल लूत मगर खानदान लूत के हम इन सब को जरूर बचा लेंगे सिवाय इस लूत की बीवी के हमने इसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में से मुकर्रर कर दिया। हमारे भेजे हुए फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे तो उन्होंने यानी लूत अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। उन्होंने कहा नहीं बल्कि हम तेरे पास वो चीज़ लाए हैं जिसमें ये लोग शक को शुबा कर रहे थे, हम तेरे पास सरी हक लाए हैं और हैं भी हम बिल्कुल सच्चे। अब तो अपने खानदान समेत इस रात के किसी हिस्से में चल दे और आप इनके पीछे रहना, और खबरदार तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी ना देखे, और जहाँ का तुम्हें हुक्म किया जा रहा है वहां चले जाना। और हमने इनकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ें काट दी जाएंगी। वजह अहलुल मदीना यस्तबशिरून और शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा ये लोग मेरे मेहमान हैं, तो मुझे रुसवा न करो, अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा न करो। वो बोले क्या हमने तुझे दुनिया भर की ठेकेदारी से मना नहीं कर रखा? नाउज़ुबिल्लाह, नेकी करने वालों और नेकी की दावत देने वालों को अमूमन ऐसे ही ताने मिलते हैं, तो याद रखिए मजाक उड़ाया जाना ऐसे टेस्ट है। आप अल्लाह के रस्तों पे चले, नबियों के तरीकों को फॉलो करें तो आपका मजाक जरूर उड़ाया जाएगा। जैसे आप यहाँ से मक्का जाएंगे ना तो रास्ते में थोड़ी थोड़ी देर के बाद माइल स्टोन आएंगे ना, मक्का इतने किलोमीटर इतने किलोमीटर, तो आपको समझ आएगा कि आप मक्का ही जा रहे हैं। आप किसी ऐसे रास्ते पे जाएं लेकिन माइल स्टोन ही नहीं आ रहा मक्का का, कुछ और आ रहे हैं, कुसीम आ रहा है, मदीना आ रहा है, ताइफ आ रहा है, कुछ मक्का नहीं आ रहा, तो आपके दिल में जरूर शक आएगा कि शायद मैंने गलत रास्ता तो नहीं लिया। बस लिख लीजिए जो बंदा सिराते मुस्तकीम पे जाएगा, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल उसका शुआर होगा, रसूलों के नक्शे कदम पे चलेगा, उसके रास्ते में माइल स्टोन्स में एक बहुत बड़ा माइल स्टोन आएगा, इस्तेहज़ा मजाक, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। आप सच्चे दीन की तरफ आए ना तो ये दो चेंजेस जरूर आएंगे। कल तक जो आपकी दोस्तियां थी, जो आपके बड़े अच्छे अच्छे दिल लुभाने वाले काम थे ना, वो आपको बुरे लगेंगे। वो दोस्तें भी आपको थोड़ी थोड़ी अनोइंग लगेंगी कि जो आपको गलत चीज़ों की दावत देती थी, और वो लोग जिनको कल आप वैसे ही दीनदार समझ के छोड़ देते थे और उनके लतीफे बनाते थे और उनको अपने से हल्का जानते थे, आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से वो आपको अपने लगेंगे। इससे क्या पता चलता है? कुरान बंदे की तरजीहात को बदल देता है। आइए ज़रा तदब्बुर थोड़ा सा करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, आयात पे अमल, शैतान से पनाह की दुआ कीजिए, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। घर में दाखिल होते वक्त पहले सलाम करें, किसी मुसलमान से मुलाकात या बातचीत के वक्त भी सलाम में पहल कीजिए, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना क्योंकि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन अल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीअ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। ये आयत आगे सूरह ज़ुमर में आने वाली है। कुरान पाक से रहनुमाई, अल्लाह की याद से गाफिल कर देने वाली चीज़ें यानी बुराई, अल्लाह की याद से गाफिल कर देने वाली चीज़ों यानी बुराई को अच्छा बनाकर पेश करना शैतान के मुअस्सर हथियारों में से है। अक्सर सोचा करें किसी भी चीज़ को जो मैं अच्छा कह रही हूँ क्या वाकई वो अच्छी है, और बुरा समझ रही हूँ तो क्या वाकई वो बुरी है? ईमान की बुनियाद पे जो रिश्ते कायम होते हैं वो कदरों मंजिलत वाले होते हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी दुनियावी इसबाब ख़त्म हो जाने के बाद मिलती है, क्योंकि फिर अल्लाह और बंदे के बीच की सारी रुकावटें दूर हो चुकी होती हैं। इसलिए कभी कोई आजमाइश आ जाए तो परेशान ना हुआ करें। गौर व फिक्र की बातें, शैतान गुनाह के कामों को आरास्ता करके इनमें मुलव्वस कराता या दुनिया की रंगीनियों में मशगूल करके नेक कामों से गाफिल कर देता है। मोमिन का दिल अल्लाह तआला के एहसानात को देखे तो इसके दिल में उम्मीद, जबकि अपनी कोताहियों पर नजर डाले तो खौफ से गुनाह छोड़ देता है। अल ईमानु बैनल खौफी वर्रिजा, ईमान उम्मीद और खौफ के बीच का नाम है। इखलास और ईमान वालों पर शैतान का कोई बस नहीं चलता। अल्लाह ताला का इबलीस की दुआ को कबूल करना इसके हक में इज्जत नहीं, बल्कि इसके और बंदों के लिए आजमाइश है। आप देखिए कि अबदी दुश्मन साथ आया था दुनिया में और मरते दम तक इंसान के साथ रहता है। बात सफा तो रिवायत से होते थे कि निज़ा की सख्तियों में शैतान आकर बंदे के ईमान को खरीदने की कोशिश करता है। तो हमेशा अपने ईमान की फिक्र कीजिए। आगे देखते हैं आयत नंबर 71 से हजरत लूत का किस्सा कंटिन्यू होता है। काला हा उलाई बनातीन कुन तुम फाइलीन, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी बच्चियां मौजूद हैं, यानी निकाह करना है तो औरतों से करो। तेरी उम्र की कसम, वो तो अपनी बदमस्ती में सरगर्दां थे, पर सूरज निकलते निकलते ने एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिलाखिर हमने शहर को ऊपर तले कर दिया और इन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। बिलाशुबा बसीरत वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। ये बस्ती ऐसी राह पर है जो बराबर चलती रहती, मुराद है कि आम गुजरगाह है, हाईवे है, हर वक्त उस पर ट्रैफिक होता है, और इसमें ईमानदारों के लिए बड़ी निशानी है। एका बस्ती के रहने वाले भी बड़े जालिम थे जिनसे आखिर हमने इंतकाम ले ही लिया। ये दोनों शहर खुले आम रास्ते पर हैं। बलाकत कज़्ज़ब अस्हाबुल हिजरिल मुरसलीन, और हिजर वालों ने भी रसूलों को झुटलाया और जिन्हें हमने अपनी निशानियां भी अता फरमाई, लेकिन ताहम वो इनसे रूगर्दानी ही करते चले गए। ये लोग पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे बेखौफ होकर, आखिर इन्हें भी सुबह होते ही चिंगाड़ ने आ दबोचा। बस इनकी किसी तदबीर और अमल ने इनको कोई फायदा ना दिया। इससे पता चलता है कि जब अल्लाह की पकड़ आती है ना तो बड़ी बड़ी तरक्की के दावे सब पीछे रह जाते हैं। वलकद खलकना समावाती वल अर्थ, हमने आसमान और जमीन को और इनके दरमियान की सब चीजों को हक के साथ पैदा फरमाया है, और कयामत जरूर जरूर आने वाली है। बस तू हुस्नो खूबी और अच्छाई से दरगुजर कर ले, यकीनन तेरा परवरदिगार ही पैदा करने वाला और जानने वाला है। आगे आयत को हाईलाइट कीजिए। यह है सूरत फातिहा की शान, आयत 87 सूरत हिजर। वलकद आतैना कसब अमिनल मसानी वल कुरआन अल अजीम, यकीनन हमने आपको 7 आयतें दे रखी हैं कि वो दोहराई जाती हैं, और अजीम कुरान भी दे रखा है। आप हरगिज अपनी नजरें इस चीज की तरफ ना दौड़ाएं जिससे हमने इनमें से कई किस्म के लोगों को बहरामंद कर दिया, यानी फायदा दे दिया उनको, ना इन पर आप अफसोस करें और मोमिनों के लिए अपने बाजू झुकाए रहें। सूरत फातिहा सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला डॉक्यूमेंट है, सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली दुआ है। करोड़ों लोग हर दिन 5 वक्त की नमाज में अरबों दफा सूरत फातिहा पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, है क्या पूरे कुरान का खुलासा। ये जो सब अम मिनल मसानी है ना, 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयतें, तो सूरत फातिहा के 30 से भी ज्यादा नाम है, उनमें से एक नाम सबल मसानी है। तो जब भी पढ़ा करें, मोहब्बत से पढ़ा करें, गौर व फिक्र किया करें। हमने इसको कई तरह से समझने की कोशिश की है। तकरीबन 2 साल पहले ऑस्लो में एक कोर्स से पहले न्यू पीपल के लिए, बिल्कुल नए लोग जो सबीलुल जन्नत में एडमिट हो रहे थे, तो हमने इसको 17 क्लासों में किया। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको रोशनी का सफ़र के नाम पे, तो अगर आप किसी सिस्टर को अपने प्यारों में किसी को कुरान के करीब करना चाहते हैं, अपने बच्चों को बच्चियों को, तो उससे फ़ायदा उठाइए, क्योंकि उसका अंदाज़ आलिमाना नहीं है। उसमें कोई मुश्किल बात नहीं की वो अलग की हुई है। शायद 20-25 क्लासों में सूरह फातिहा हुई थी जब हमने उसको इन डेप्थ पढ़ा था। तो ये मुख्तलिफ लेवल के लोगों को सामने रख कर ये बातें की जाती हैं। अल्लाह करे कि हम अपने हिसाब से हर बात को लेकर समझने वाले बने और दूसरों में, हमारे प्यारों में जो जिस लेवल का है उस तक वो चीज़ पहुंचाने वाले बन जाएं। आगे देखिए, वकुल इन्नी अना नज़ीर मुबीन, और कह दीजिए कि मैं तो खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। जैसे कि हमने इन तकसीम करने वालों पर उतारा है जिन्होंने इस किताब इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये भी दुख वाली बात है, पूरा कुरान नहीं पढ़ते हैं। कुछ सूरतों का मजमू है, पंच सूरा है, बस वही पढ़ते हैं। पढ़िए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा कुरान भी पढ़िए, फातिहा से नाज तक पूरा कुरान आपका। याद रखिए, जो कौम कुरान के साथ जो काम करती है ना, अल्लाह उस कौम के साथ वही कर देती है। आज उम्मत फ़िरकों में क्यों बढ़ गई? पूरा कुरान नहीं पढ़ा। कुरान पढ़िए, आपका कोई फिरका नहीं रहेगा। कसम है तेरे पालने वाले की, हम इन सब से ज़रूर बास पुरस करेंगे, हर चीज़ की जो वो करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पारा रुक हुआ आयत 93 पे। अब आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्लम खुल्ला दावत देने का हुक्म है, बड़ी अहम आयत है सीरा की रोशनी में। फस तभी मा तुमर, बस आप इस हुक्म को जो आपको किया जा रहा है खोल कर सुना दीजिए और मुशरिकों से मुंह फेर लीजिए। आपसे जो लोग मस्खरापन करते हैं, इनकी सजा के लिए हम काफी हैं। जो अल्लाह ताला के साथ दूसरे माबूद मुकर्रर करते हैं, इन्हें अन करीब मालूम हो जाएगा। हमें खूब इल्म है कि इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है। आप सूरतों के मिजाज से समझ सकते हैं किस दौर की सूरतें। सूरत हिजर उस दौर की है जब खुलेआम दावत हो रही थी और लोग अब आपका मजाक करते थे, टॉर्चर देते थे, सहाबा को तकलीफें देते थे, तो अल्लाह के नबी का दिल तंग होता था। किसको अच्छा लगेगा कि उसके प्यारों को कोई तकलीफ दे? खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बातें छांटते थे, तो अल्लाह ने क्या कहा? अन्ना का यदी को सदरुक, नोट कीजिएगा, ये तो कहा कि दिल तंग होता है, लेकिन ये नहीं कहा कि आप गलत बातें जुबान से निकालते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही है कि दिल में तो आप घुटते हैं लेकिन चुप रहते हैं। आप अपने ऊपर लीजिए, जैसी मुखालफत नबी की हुई, अगर वैसी नहीं उसका एक अश्रे अशीर हमारी हो, तो हम उस वक्त क्या करते हैं? जब कभी लोगों की बातों से दिल तंग आए तो क्या करें? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, एक काम, वकुम मिनस साजिदीन, दूसरा काम, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ये तीसरा काम। क्या? सुनिए, हमें खूब इल्म है कि इनकी बातों से आपका दिल तंग होता है। आप अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम बयान करते रहें और सजदा करने वालों में शामिल हो जाएं और अपने रब की इबादत करते रहें, यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए, यानी यकीनी चीज से आपका वास्ता बढ़ जाए। अल्लाह ताला ने यहाँ लोगों के गमों को भुलाने का खूबसूरत तरीका बताया। आइए तदब्बुर और अमल के पॉइंट्स लेते हैं। आयात पर अमल, अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि वो आपको हिकमत और फरासत अता फरमाए। आगे सूरह शुरा में हज़रत इब्राहिम की एक दुआ की रोशनी में भी ये मांगेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ सवारियों की शक्ल में नेमतें दी हैं, इन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप सब किस तरह यहाँ आए? मेरा लिए यहाँ तो 90% लोग कहेंगे गाड़ी पे आए, 100% ही शायद। आज आपने वापसी पे ना सिर्फ ये कि गाड़ी को देख के शुक्र अदा करना है, बल्कि गाड़ी वाले और 90% लोग, मुझे पता चला है कि अपने हस्बैंड्स के थ्रू आते हैं। अल्लाह आपके हस्बैंड्स को इसका बेहतरीन बदला दे, आपने उनका शुक्रिया अदा करना है। और अगर किसी और जरिए से पैसे दे के या टैक्सी पे वगैरह पे आते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जिसने आपको असबाब दिए और आप उसको इस्तेमाल करके यहाँ पहुँचे। बच्चों को सिखाएं, जब गाड़ी में बैठे बैठा बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक गाड़ी धोने की वजह से कई दफ़ा आप स्टक हो जाते हैं। किस तरह आप इधर से उधर सड़कों पे चलते फिरते भागते दौड़ते, क्या करें किधर जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो आपके मेरे पास है। अल्लाह ताला इन नेमतों को बाकी रखे। दूसरों के साथ मिलकर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अदा करना है। कुरान पाक से रहनुमाई, अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है इसे दुनिया की रंगीनी से निकाल कर बाकी रहने वाले नेक कामों में लगा देता है। आपने लिए तो इस रमजान में ये दुआ मांग ही लें, अल्लाह मेरा दिल इस दुनिया की रंगीनियों से निकाल दे, जो मेरा वक्त ले ले, जो मेरी सोचें ले ले। फिर अल्लाह की तस्बीह और सजदा करने से दिल को सुकून मिलता है, तंगी और घुटन दूर होती है। मौत आने तक अल्लाह की बंदगी और इबादत में लगे रहना है। बाज़ लोग कहते हैं जी फलां बुजुर्ग हैं, वो तो पहुंचे हुए हैं, अब वो नमाजें भी नहीं पढ़ते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इंसान को अल्लाह कहते हैं मौत तक के मेरी इबादत में रहे, तो आपके मेरे लिए क्या? मौत के वक्त भी शैतान आके आजमाता है। एक इमाम थे, तो जब निजा की सख्तियां थी तो बेहोशी में मुंह से एक आवाज निकल रही है, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। फिर बेहोश हो गए, फिर होश सही हो गए, फिर जरा सी तबीयत बहल भी गई। जब होश में आए तो बेटों ने कहा अब्बा आप अभी क्या कह रहे थे, अभी नहीं अभी नहीं। कहा कि मेरे पास शैतान आया था और मुझे कह रहा था इमाम तू मेरे हाथों से निकल गया, मैंने सारी जिंदगी पूरी कोशिश की तुझे बहकाने की, तू बच गया, और मैं उसको कह रहा था अभी नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी सांस की डोरी बाकी है, अभी नहीं अभी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो गौर व फिक्र की बातें, फरासत दिल को गुनाहों से, अखलाक को आलूदगी, और दुनिया की चाहत से पाक करने से मिलती है। तो लेना चाहते हैं फरासत, जीनियस होना, दूर सोना। अल्लाह आपकी नज़र इबरत अली कर दे, अल्लाह आपके अंदर एक बरकत डाल दे, एक रूहानियत डाल दे, इसके लिए ये तीनों काम छोड़ने पड़ेंगे। दरगुजर बेमहल ना हो, जहां सजा देने की जरूरत हो वहां दरगुजर से काम ना लिया जाए। यानी इस्लाम आपको हिकमत सिखाता है कि कहाँ आपने प्यार 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 करना है और कहाँ सख्ती सख्ती करनी है। आप देखिए कि आपके घर में दो तीन किस्म की छुरियां होंगी जरूर। एक तो बिल्कुल पतली सी ढीली डाली, फ्रूट काटते हैं आप, आपने आड़ू काटना है तो वो पतली छुरी काफी है, लेकिन अब उस छुरी से आप गोश्त काटने लगेंगे तो आपका हाथ कट जाएगा, गोश्त नहीं कटेगा। बस इससे लिख लीजिए, जब आपको दुनिया में अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि किस छुरी से किसको काटना है, तो क्या ये अकल समझ नहीं कि कहाँ किस तरह सख्ती करनी, कहाँ नरमी करनी? तो नरमी 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 भी कोई बात नहीं है, और सख्ती 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 भी कोई बात नहीं, ये मकसूद भी नहीं है। ये देखो कि इस वक्त किस चीज की जरूरत है। हमने तो आज किचन को इतना एलेबोरेट कर लिया, 10 किस्म की तो हमारे पास कैंचियां छुरियां होती हैं। तो इंसानों को ना तो कुंद छुरियों से काटे, और ना उनको अपनी फरसूदा किस्म की तबलीग के जरिए दीन से दूर कीजिए। नफ्स के तजकिए का तरीका क्या है? लोगों के मालो मता की तरफ नजर उठा कर ना देखें। सूरत हिजर में आप पढ़ाए हैं, सूरह फातिहा वाली आयत के फौरन बाद, हम जब दुनिया की चीजों को, लोगों की चीजों को ऐसे देखते हैं, लंबी हो जाती है निगाह, गाड़ी देख के किसी की निगाह वापस ही नहीं आती, हाय कितनी बड़ी गाड़ी है, हाय क्या कपड़े उन्होंने पहने थे, फिर आकर जो गर्ज कसीदे सुनाते हैं, राल टपकवाते हैं, छोड़ दीजिए। कायनात पे गौर कराएं, इंसानियत को दिखाएं, आप किसी भी दुनिया के मुल्क में जाते हैं ना, वहां की नेचर दिखाएं लोगों को, वहां के अगर लोगों की भी खूबी बयान करें तो इस सोच से बयान करें कि देखिए अल्लाह ने कैसे बंदे बनाए हैं। लेकिन आप अपनी तस्वीरें खींच खींच के भेज रहे हैं, आप अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? लोगों की नजरों में खुद बड़े बन रहे हैं। फिर इसी तरह मौत को यकीन का नाम दिया गया, ताकि इसके आने में शक ना हो और तैयारी कर ली जाए। तो सूरत हिजर बड़े खूबसूरत पैगाम पे मुकम्मल हुई।